राधा माधव कुंज बिहारी जय, गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी जय, गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी जय, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वन चारी, जमुना तीरा वन चारी, राधा माधव कुंज बिहारी जय, जय राधा माधव कुंज बिहारी जय, गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी जय, गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी जय, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वन चारी, जमुना तीरा वन चारी, राधा माधव कुंज बिहारी जय, जय राधा माधव कुंज बिहारी जय, गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी जय, गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी जय, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वन चारी, जमुना तीरा वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी जय, जय राधा माधव कुंज बिहारी जय भाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीमद्भागवतं चतुर्स्कंद अध्याय 21वां ऐसे क्लास हिंदी में हो रहा है ठीक है ना अध्याय 21वां अध्याय का शीर्षक है महाराज पृथु द्वारा उपदेश और श्लोक संख्या 25 कृपया अभी दोहराइए तत्प्रजा भर्तृपिंडार्थम स्वार्थमेवानसु यवः कुरुताधोक्षयधियस्त तर्हि मेनुग्रह कृतः तत्प्रजा भर्तृपिण्डार्थम् स्वार्थमेवानसु यवः कुरुताधोक्षजधियस्स तर्हि मेनुग्रह कृतः तत्प्रजा भर्तृपिण्डार्थम् स्वार्थमेवानसु यवः कुरुताधोक्षजधीयस तर्हि मेनुग्रह कृतः
अब दोहराइए
भर्तृपिण्डार्थम् स्वार्थमेवानसु यवः
माताजि
तत्प्रजा भर्तृपिण्डार्थम् स्वार्थमेवानसु यवः तदोक्षधियस् तर्हि मेनुग्रह कृतः
तत् अतः प्रजः हे प्रजागण भर्तृ स्वामी के पिंड अर्थम मृत्यु के पश्चात कल्याण, स्व अर्थम अपना हित, एव निश्चय ही अनसुयवाह बिना ईर्षा के कुरुत करो। अधोक्षज श्री भगवान धियः उनका चिंतन, तर्हि अतः मैं मुझ पर अनुग्रह कृपा कृतः की गई। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथु महाराज ने कहा, अतः हे प्रजागण, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसी के साथ अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते इस प्रकार, इस श्लोक में अधोक्षर धियः शब्द महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है कृष्ण भावनामृत। राजा तथा प्रजा दोनों को श्री कृष्ण भावनाभावित होना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के बाद उन्हें निम्न योनि में जाना होगा। उत्तरदायी सरकार को चाहिए कि सबों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दें। कृष्ण भावनामृत के बिना राज्य अथवा नागरिक कोई भी जिम्मेदार नहीं बन सकते। अतः पृथ्वी महाराज ने नागरिकों से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे कृष्ण भावनामृत हों और वे उन्हें सिखाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। कृष्ण भावनामृत का सार भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में दिया हुआ है। यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तू जो भी कर्म करे, जो कुछ खाए, जो कुछ दान दे और जो भी तपस्या करे, वह सब कृष्ण भावनामृत में करे या श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए करे। यदि सरकारी नौकरों समेत राज्य के सारे लोगों को आध्यात्मिक जीवन की विधि सिखला दी जाए, तो यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा विभिन्न प्रकार से कड़ा दंड पा सकता है, किंतु वे इनसे प्रभावित नहीं होंगे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपरान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूर्खं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्।
हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं सभी उपस्थित वैष्णवों के कृपा की याचना करता हूँ। विशेष रूप से आप सभी बहुत ही सम्मानीय वैष्णव हैं और उनसे विशेष रूप से सिद्धार्थ प्रभु जी भी यहाँ विराजमान है और सभी आप वरिष्ठ भक्त हैं, इनकी विशेष रूप से मैं कृपा की याचना करता हूँ। ये भागवतम क्लास में अपने शुद्धिकरण के लिए देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। तो विशेष इस श्लोक में, ये जो आज हम श्लोक देख रहे हैं, इस श्लोक में पृथु महाराज अपने प्रजा को कुछ उपदेश दे रहे हैं। और पृथु महाराज, हालांकि हम सभी जानते हैं कि पृथु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और अपनी प्रजा को इस तरह उपदेश दे रहे हैं कि इस उपदेश के द्वारा वे प्रचार भी कर रहे हैं प्रजा को, वे अपने कल्याण की भी बात कर रहे हैं पृथु महाराज, और साथ ही साथ जो प्रजागण है उनके भी कल्याण की बात यहां पर पृथु महाराज करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस श्लोक में भी, इसी श्लोक में कहते हैं कि भर्तृपिंडार्थम और स्वार्थम, इन दो शब्दों में हम देख सकते हैं कि स्वयं का भी कल्याण सोच रहे पृथु महाराज और साथ ही साथ प्रजा का भी कल्याण। भर्तृपिंडार्थम का अर्थ होता है कि मृत्यु के पश्चात, पृथु महाराज कहते हैं कि मेरी मृत्यु के पश्चात भी आपको वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार आचरण करना चाहिए, और इससे क्या होगा, मृत्यु के साथ मेरा भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। इसके लिए और कहते हैं साथ साथ कि अनसूयवाहा, कि इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए दोनों की तरफ से। अगर ईर्ष्या में अगर हम लग जाते तो फिर कृष्ण भावना में होना इतना आसान, ये मुश्किल है वैसे। और एक विशेष शब्द का यहां प्रयोग करते हैं, अधोक्षज धिया। प्रभुपाद जी भी शुरुआत तात्पर्य के शुरू में ही, आरंभ से ही लिखते हैं कि इस श्लोक में अधोक्ष धिया शब्द महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है कृष्ण भावना मृत। तो पृथु महाराज चाहते एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं प्रजा को, वे चाहते कि सभी को कृष्ण भावनाभावित होना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। स्वयं का भी कल्याण सोच रहे हैं और उनका भी, विन विन। हम आजकल सीख रहे हैं सेमिनार में, विन विन, हमारा भी भला और उनका भी, दोनों का। तो विन विन सिचुएशन इधर आ गई है आज इस श्लोक में। तो कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, राजा जिस प्रकार राजा का आचरण है उसी प्रकार प्रजा का भी होता है। आजकल हम देखते हैं आजकल के समाज में प्रजा का आचरण इसलिए ऐसा वैसा है, ऐसा वैसा शब्द का ज्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं मुझे, आपको पता है कि आजकल के प्रजा का आचरण ऐसा वैसा इसलिए है क्योंकि राजा भी कैसे वैसे है। अभी वैसे है क्यों, आपको पता है वैसे का अर्थ क्या है। जैसे हम स्कूल में जब हमारे टीचर होते थे जो खेल को सिखाते थे, वो कहते कि जैसे थे, तो ऐसे अभी आजकल के सभी जैसे थे ही है, बस कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा उनमें। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पृथु महाराज जैसे राजा भी नहीं है और प्रजा भी ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब वो समझ सके राजा क्या कहना चाहते हैं। आजकल की प्रजा वैसे राजा, या जो आजकल तो राजा नहीं है, वैसे लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वे जो कहना चाहते वैसे तो प्रजा समझ सकती है, लेकिन समझ के उसके अनुसार अगर आचरण कर भी रहे वैसे भी आजकल, तो नुकसान दोनों का भी हो रहा है। जैसे कि हम कल के और परसों के श्लोकों से हम देख सकते हैं कि अगर प्रजा कुछ पाप करती है तो उसका 1/6 पार्ट उस पाप का राजा को मिलता है। अगर राजा कहता भी कि नहीं मैं बहुत शुद्ध हूं, फिर भी उसको 1/6 पार्ट राजा को मिलता ही है। और अभी तो कितना मिलता होगा, 1/6 मल्टीप्लीकेशन करते करते कितना मिलता होगा, हम उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। चाहे कितने मैथमेटिशियन आ जाए, कोई स्कॉलर आ जाए, उनको कहे कि आप हिसाब करो इसका, तो हिसाब नहीं कर सकते, इतना पाप उनका बढ़ गया है। और यहां देखते कि जो पृथु महाराज है वो तो एक अलग ही किस्म के राजा है, जो पूरी तरह से स्वयं भी कृष्ण भावना भावित है, और स्वयं कृष्ण भावनावित होने के नाते वे चाहते हैं कि सभी प्रजा भी क्या हो, कृष्ण भावना भावित हो। ऐसे कोई भक्त होता है, हम अपने उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम जब कृष्ण भावना में नहीं थे, जब कृष्ण भावना में आ गए तो हम क्या सोचने लगे कि मुझे मिला है अमृत, तो मैं केवल अपने लिए क्यों रखूं, क्या करूं मैं दूसरों को भी, मैं अगर बांट सकूं तो क्या हो जाएगा, सभी का कल्याण, लूट लो जिसका दिल चाहे। किया सभी जगह लूटने लगते हैं फिर जो कृष्ण भक्त है। तो यहां पर पृथु महाराज कहते कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार आचरण करो, और साथ ही साथ अधोक्ष धिया भगवान का भी चिंतन करो। यहां भी लिखते हैं कि वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और उसी के साथ अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई वर्णाश्रम के अनुसार आचरण कर रहा है लेकिन भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है तो वो कंप्लीट नहीं, पूर्ण नहीं है, कुछ तो कमी है उसमें, वो व्यक्ति उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। वैसे कल्याण नाम का एक गांव भी है ना इधर मुंबई एरिया में, हाँ, तो कल्याण गांव का नाम कल्याण हो सकता है लेकिन वहां के लोगों का कल्याण हुआ है कि नहीं पता नहीं किसी को, तो क्योंकि मुंबई में है तो फिर थोड़ा रेलेवेंट भी है वो कल्याण। क्योंकि हम जब आते हैं, हम जब आरवड़े से आते तो पहले हमने सुना कि कौन सा गांव है, उन्होंने कहा कल्याण, तो मेरा कल्याण हो गया अभी। कल्याण यहां किसका कल्याण होना चाहिए, बात हो रही है प्रजा का कल्याण होना चाहिए। क्यों सोच रहे राजा ऐसे कि स्वयं भी आचरण कर रहे, एक राजा का कर्तव्य होता है, क्षत्रिय राजा क्षत्रिय होता है, क्षत्रायति इति क्षत्रियः, दूसरों को हानि ना पहुंचे, दूसरों को क्षति ना पहुंचे, इसलिए कौन जिम्मेदारी कौन लेता है, एक क्षत्रिय एक राजा। तो पृथु महाराज भी देख रहे, एक ख्याल कर रहे इस सभी जीवों का कि मैं तो कृष्ण भावनात का अभ्यास कर रहा हूं लेकिन साथ साथ सभी प्रजा का भी कल्याण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा पेट भर गया बस हो गया, दूसरों का मुझे कुछ लेना देना नहीं, ऐसे भी नहीं, सबका विचार कर रहे यहां पर। और इस यहां पे प्रभुपाद जी इस श्लोक का भी जिक्र करते हैं, यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। इसके अनुसार कि हम जो कुछ कार्य करते हैं उसको हमें किसे अर्पण करना चाहिए, भगवान को अर्पण करने की बात इस श्लोक के जरिए भगवान करते हैं। तो भगवान को जब हम कुछ चीज अर्पण करते हैं तो क्या हो जाता है, उस चीज को कमाने के लिए या प्राप्त करने के लिए जितना समय हमने लगाया है उस समय को हमने किसको लगा दिया, भगवान को अर्पण किया है। हम कहते हैं कृष्णार्पण वस्तु, कभी लोग गलती से इसका मिसयूज भी कर लेते हैं तो कुछ चीज खो जाती है तो बोलती है अभी क्या है, कृष्णार्पण वस्तु, ढूंढते बहुत लेकिन नहीं मिलने के बाद बोलते कृष्णार्पण वस्तु। ऐसे ही व्यक्ति नदी से जा रहा था, उसके बैग में कुछ रखा था और सोच रहा था कि चलो अपने लिए लेके जाऊं, लेकिन नदी में बैग भी पकड़ना था उसको और तैरना भी था, और तैरते तैरते ऐसे बहुत हिफाजत से उसने बैग को पकड़ रखा था कि मानो मतलब वो उसका प्राण ही है, कुछ चीजें हो सकती है खाने की भी नहीं कुछ भी। तो जार तैर रहा था और हुआ ऐसे कि अचानक कि इतनी जोर से बाढ़ आ गई और बाढ़ में लहरें आ गई पानी की, और वो हाथ में जो थैला था थैला ऐसे बह के जाने लगा, बहुत प्रयास करने लगा बचाने लगा उसको पकड़ने के लिए, लेकिन बाद में सफल जब नहीं हुआ तो क्या कहा, कृष्णार्पण मस्तु कृष्णार्पण मस्तु, मतलब बहुत ये जब हाथ में नहीं मिलता तब बोलने से अच्छा कि पहले अगर करेंगे, तो भगवान ऐसे नहीं कहा कि बाद में आप बोलो बूढ़ा होने के बाद कृष्णार्पण मस्तु, हाँ जब शरीर पूरा अभी कुछ नहीं शरीर में ताकत नहीं है, ये शरीर क्या है कृष्णार्पण वस्तु, ऐसे सूखा फूल होता है ना उसको भगवान, अरे क्या है ये फूल किस लिए लाए हो, ये भगवान को अर्पण करने के लिए, ऐसी विधि नहीं है। तो इस प्रकार तो प्रजा से स्वयं राजा करवा रहे सिखा रहे उनको, और इस यहां पर रूपा जी भी तात्पर्य लिखते कि पृथु महाराज बहुत ही मतलब आतुर थे प्रजा को, यहां लिखते है कि अतः पृथु महाराज ने नागरिकों से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे कृष्ण भावनावित हों और वे उन्हें सिखाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, वैसे उत्सुक थे सिखाने के लिए और सबको सिखा रहे थे। और जैसे बहुत सारे राजर्षि भी हुए हैं, जैसे परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं शास्त्रों से या इतिहास से, या फिर बहुत ज्यादा साल भी नहीं बीते, 3-4 साल पहले शिवाजी महाराज भी हुए महाराष्ट्र में, जो राजर्षि थे, और राजर्षि कहते हैं कि राजा है और ऋषि भी है, दोनों है, दोनों का मिलाप है उनमें। तो स्वयं कृष्ण भावना थे और दूसरों को भी क्या करना चाहते थे, कृष्ण भावना अमृत देना चाहते थे, प्रचार करना चाहते और कर भी रहे थे। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी हुए हैं जो स्वयं भी कृष्ण भावनावित नहीं है और दूसरों को भी कृष्ण भावना नहीं देना चाहते, कुछ उदाहरण बता सकते हैं आप, हाँ औरंगजेब तो औरंगजेब ऐसे था कि नाम ही ऐसे, नाम सुनते ही पता लग जाता है कि कृष्ण भावना से कोई कनेक्शन नहीं है उनका, नाम ही ऐसा है, नाम का मीनिंग पता नहीं मुझे लेकिन हाँ जेब का मतलब है कि जेब में कुछ भरा हुआ है लोगों का, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि लोगों को कुछ दिया नहीं अपनी जेब भी भर दिया। दूसरा उदाहरण है शास्त्रों से भागवतम से वेन राजा का उदाहरण है, वेन राजा तो सभी भी भक्त नहीं थे और जो भक्ति कर रहे थे उनसे भी भक्ति नहीं करवा रहे थे, हाँ वो नहीं चाहते थे कोई भक्त बने। वेद राजा क्या चाहते कि मैं ही भगवान हूं और मेरी सभी भक्ति करेंगे वो तब ठीक है, तथास्तु। अगर मेरा नाम नहीं ले रहे या फिर मेरी भक्ति मेरी उपासना नहीं करे तो फिर कोई फायदा नहीं है। वो भगवान की भक्ति अगर करे तो फिर वो असली वो मेरी प्रजा नहीं है, मेरे फॉलोअर्स नहीं है, जो आजकल हम देख सकते हैं। हिरण्यकश्यप भी वो भी सोचते थे कि सभी मेरी क्या होनी चाहिए, जब भी मुझे कोई देखा गया तो क्या बोलना चाहिए, हिरण्यकश्यप की। देखो किसने जय बोल दिया अभी, तो हमें याद रखना चाहिए कि जय कब बोलना है। ऐसे बच्चे होते स्कूल में, वो क्या बोलते हैं, भारत माता की बोलने के बाद उनको पता है कि जय बोलना है। ऐसे एक बार एक बड़े आचार्य हुए रसिकानंद प्रभु, तो रसिकानंद प्रभु अपने अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में बैठे थे। और जो रसिकानंद प्रभु जो कृष्ण के भक्त, वो हर समय क्या करते हैं, कृष्ण की कथा करते हैं। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत श्रवाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। इस प्रकार कृष्ण कथा हो रही थी और राजा भी वहां पे बैठे थे सुनने के लिए। एक एक राजा एक आदर्श के रूप में वहां सुन रहे थे ताकि सारी प्रजा भी उनका अनुसरण कर सके। तो राजा सुन रहे थे कथा, और उतने में क्या हुआ कि उनका जो एक मैनेजर था उनका नाम था रामकृष्ण, जो रसिकांत प्रभु का एक बहुत अच्छा शिष्य था, बहुत गंभीरता से भक्ति कर रहा था। तो वहां पे वो पहुंच गया और उसने देखा सभी की तरफ कि सभी बहुत ध्यान से सुन रहे, रसिकांत प्रभु के मुख से जो कृष्ण कथा थी बहुत ध्यान से सुन रहे, लेकिन जो राजा है उसका ध्यान नहीं वहां पर। राजा इधर उधर कहीं तो देख रहा है, ऐसे कृष्ण कथा में मन नहीं लग रहा है उसका। तो तुरंत वो रामकृष्ण वहां पहुंच गया और क्या किया, तुरंत जाकर तमाचा लगा दिया जोर से। ऐसा हम अभी तो नहीं कर सकते, ऐसा ये प्रैक्टिकल नहीं आजकल, लेकिन रामकृष्ण ने राजा को तमाचा लगा दिया। तो सभी जो थे वहां पे मंत्रीगण थे उठ गए, हाँ, और तमाचा इतना जोर से लगा दिया कि राजा भी गिर पड़ा नीचे। कितना तमाचा लगा दिया जोर से, राजा भी गिर पड़ा वहां। और फिर वहां सभी जो मंत्रीगण थे वो जाने लगे रामकृष्ण को ऐसे पकड़ने के लिए, मारने के लिए। तो उतने में क्या हुआ कि राजा को होश आ गए, राजा उठ गए, खड़े हो गए, और राजा ने कहा कि नहीं 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 इसको इसको कुछ मत करो, वास्तविक गलती तो मेरी है, अपराध तो मैंने किया है, मुझसे अपराध हुआ है, इसलिए सजा मुझे मिल गई है। वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा के अलावा जो कोई विषय है वो सब विष के समान है। और मैं क्या कर रहा था, कृष्ण कथा को छोड़कर विष को गले लगा रहा था, इसलिए इसने जो मुझे सजा दी है वो सही है। जो तमाचा तुम्हारा ऐसे तो कुछ नहीं किया, कम ही किया ऐसे, तो सही है। और बाद में रोने लगे कहते हुए, और बाद में रामकृष्ण का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहने लगे, एक तो उसको आलिंगन दिया और हाथ हाथ में पकड़ लिया और कहा कि ये जो हाथ आपने मुझ पे उठाया है, मेरा शरीर इतना कठोर है, मेरे कठोर शरीर पर आपका हाथ उठाया मतलब आपके हाथ को क्या हुआ होगा, बहुत दर्द हुआ होगा, इसलिए हाथ को दबाने लगे। फिर बाद में दोनों बैठ के राजा समझे कि गलती मेरी थी, मुझे बहुत ध्यान से इस कृष्ण कथा को सुनना चाहिए था, ये समझते हुए राजा भी बैठ गए वहां पर और कृष्ण कथा सुनने लगे। तो हम इससे इस कथा से हम समझ सकते हैं कि राजा भी अगर आदर्श है तो प्रजा भी उनका अनुसरण करती है, यथा राजा तथा प्रजा। और श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसका अनुसरण सभी लोग करते हैं, यदि आचरति श्रेष्ठ। इस प्रकार राजा ही अगर कच्चा है, राजा भगवान का भक्त नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो प्रजा भी सोचे कि राजा में कुछ कुछ दम नहीं है, तो फिर प्रजा नहीं सुनना चाहेगी। एक बार ऐसे हुआ कि एक, आप तो इन कथाओं को जानते ही होंगे, कि श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तमदास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, ये सभी बहुत से बैलगाड़ियों में बहुत सारे ऐसे बुक्स लेके जा रहे थे। हो सकता बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन होगा तब कुछ, तो बहुत सारे बुक्स ऐसे बैलगाड़ी में भर भर के लेके जा रहे थे, बहुत मतलब अमूल्य ऐसे ग्रंथ थे उसमें, आचार्य उनके ग्रंथ उसमें भरे हुए थे। और ब्रज से, वृंदावन से जा रहे थे गौर मंडल की ओर, और जा रहे थे तो बहुत ही मतलब कॉशियस थे, कि बहुत सावधानी से मतलब ध्यान रखा करते थे उन ग्रंथों की तरफ, कि कोई चुरा के ना ले जाए इसलिए। और ऐसे जा रहे थे एक बार ऐसे एक गौर मंडल में जब प्रवेश हुआ तो ऐसे हुआ कि रात का समय था, थोड़ा जंगल ही था वहां पे, और सभी बैलगाड़ियों को वहां रोक दिया और ये तीनों श्रीनिवास आचार्य, रतन दास ठाकुर और श्यामांतरू वहां विश्राम करने लगे। और भगवान की कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि इतनी गहरी नींद में सो गए कि बहुत बहुत गहरी नींद में। और राजा वहां का जो राजा था उसका नाम मुझे याद नहीं, वीर हमवीर ऐसे कुछ तो वीर हमवीर वो राजा था वीर हमवीर। तो उसने जब देखा तो उसने देखा नहीं मतलब सुना पहले कि यहां क्या हो रहा है, बहुत सारे जेवरात हीरे मोती ऐसे बैलगाड़ी में बक्सों में भर भर के जा रहे। उसको लगे अभी क्या करूं मैं, हाँ मैं डकैतों को भेजता हूं। वैसे राजा का कर्तव्य ये नहीं कि ऐसे डकैतों को भेजना नहीं, वैसे राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, डकैतों से बचाना है। क्षत्राय थी क्षत्रिय, लेकिन उल्टा हो रहा है इधर। तो डकैतों को भेजा वहां पर और डकैतों ने देखा कि सभी सो रहे तो सब बक्से थे सब भगा के लेके आए वहां से, चुरा के लेके आए। और जब चुरा के लेके आए और राजा के पास पहुंच गए कि कहा कि ये सब हमने चुरा के लाया है, और राजा ने देखा कि वहां पे ग्रंथ थे, ग्रंथ को पढ़ने से पहले ही विलाप करने लगे। देखिए हम तो बहुत बार सुनते रहते हैं ना कि प्रभुपाद जी का एक पन्ना पढ़ के हम भक्त बन गए, कुछ बोलते हैं एक लाइन पढ़ के भक्त बन गए, और ये तो एक लाइन भी नहीं पढ़ाई भी, हाँ उसके पहले भक्त नहीं महाभाव भाव प्रकट हो गए उनमें। देख के रोने लगे, बोले हाय हाय ये मैंने क्या किया है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो खोल के देखा तो पता लगे तो महान ग्रंथ है, और पता लगा बहुत अफसोस हुआ उनको और बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगे। सोचे कि ये जो ग्रंथ है जिनके उनको लौटाना है, तब तक उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। तो वही उस जिस पेड़ के नीचे थे वही पेड़ के नीचे ही वहां विलाप करते वहीं बैठ गए राजा। और जब इनको बाद में, कथा तो बहुत लंबी है तो इस कथा समझ सकते हैं कि जब बाद में आचार्यों से मिले, इन आचार्यों से बाद में श्रीनिवास आचार्य का आश्रय भी लिया, दीक्षा भी ली उनसे, तो हम समझ सकते हैं कि राजा अगर भक्तों के संग में आता है या महान ग्रंथों के संपर्क में आता तो क्या हो सकता है, राजा में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वो भी उसकी भी इच्छा होनी चाहिए थोड़ी बहुत ऐसी कृपा प्राप्त करने की। तो ऐसे जब राजा भक्त बन गया तो बाद में वो भी क्या करने लगा, स्वयं भी प्रचार करने लगा अन्य लोगों को, तो प्रजा भी फिर भक्त बनने लगी। जिस प्रकार पृथ्वी महाराज चाहते हैं कि स्वयं भी भक्त है और सबको भक्त बनाना चाहते हैं। और दूसरी कैसी एक प्रसंग आता है, श्री वैष्णव संप्रदाय के यामुनाचार्य का नाम सुनते ही वो श्लोक याद आता होगा सबको, यदवधि मम चेतहा कृष्ण पदा अरविंदो, कि यामुनाचार्य तो जब भी कृष्ण का हर समय चिंतन किया करते थे लेकिन मन में जब भी ऐसे कुछ विषय वासना आती तो तुरंत थूक देते उस विचारों पर, क्योंकि वो रस का अनुभव, दिव्य रस का अनुभव किया करते थे कृष्ण के चिंतन में। तो एक बार ऐसे ही यमुनाचार्य, तब तो आचार्य नहीं बने थे, बहुत छोटे थे, एक 8 साल 7-8 साल की उम्र होगी उनकी, तो एक विद्वजन कोलाहल नाम का एक व्यक्ति था, बहुत ही विद्वान था और अपने आप को विद्वान तो था ही, इसलिए समझता भी था विद्वान अपने आप को, लेकिन अहंकारवश वास्तव में जो विद्वान है अपने आप को विद्वान नहीं समझता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना, जो वास्तव में पंडित है विद्वान होता है वो क्या समझता है, सबको समान रूप से देखता है, अपने आप को विद्वान नहीं समझता है, सबको ही समान। तो इस प्रकार यामुनाचार्य भी, मतलब ये तो अलग विद्वजन, तो कोलाल तो अलग स्वभाव का व्यक्ति था, अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा मानने वाला था और बहुत अभिमानी था, लेकिन यामुनाचार्य तो छोटे से थे, 8 साल के बालक ही थे। उन्होंने जब देखा कि ये जो विद्वजन कोलाहल ने मेरे गुरु को हराया है, वास्तव में गुरु को हराया नहीं था, महान वैष्णव थे उनके गुरु, एक नम्रता के कारण उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने हार स्वीकार की है, ऐसे कहा था। तो यामुनाच जय श्री श्री राधाराज बेरी ललिता विशाखा श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान श्री श्री गौर निताय श्रील प्रभुपाद की जय। तो जब यामुनाचार्य को पता लगा कि मेरे गुरु ने हार स्वीकार की है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ही क्या करता हूं, मैं भी उनके साथ कुछ शास्त्रार्थ करता हूं और उनको ही विध्वजन कोलाल को हरा देता हूं। और तब राजा को, राजा के साथ थोड़ा सा रहता था विध्वजन कोलाल, उनके साथ थोड़ा उठबैठ होती थी। और जब जो यमुनाचार्य ने कहा कि चलो मैं क्या करने की तैयारी, अभी सैनिकों को भेजा था ना राजा ने एक कर वसूल करने के लिए यमुनाचार्य के गुरु से, तो मैं कथा तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं समय के अभाव से। तो यमुनाचार्य ने कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूं राज दरबार में विध्वजन कोलाल के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए, लेकिन मैं आऊंगा तो पैदल नहीं आऊंगा, मुझे क्या भेजना होगा, पालकी घोड़े सब भेजना होगा तभी आऊंगा। तो राजन से कोई बात नहीं, पालकी में बैठ गए, जाने लगे। और रानी ने भी ठान ली थी कि ये जरूर क्या होगा, जीतेगा, रानी को पता था। और रानी ने कहा राजा से, अगर ये अगर हारता है तो मैं क्या करूंगी, अपनी दासियों की भी दासी बनूंगी। वो दास दासानुदास नहीं, अलग है, मैं दासी की दासी बन जाऊंगी। और राजा ने कहा, राजा को पता था ये क्या, ये नहीं जीत नहीं सकता है। और राजा ने कहा था कि ये अगर जीतेगा तो मेरा आधा राज इसको दे दूंगा। उसने कहा, उसको पता था कि नहीं जीतेगा इसलिए कहा था ऐसे, क्योंकि राजा मतलब ये कोई ऐसे बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा वैष्णव वगैरह नहीं था, बाद में तो भक्त बन ही गए। तो जब यमुनाचार्य पहुंच गए वहां पर, उसने कहा कि मेरे प्रश्न है। तो कि क्या प्रश्न है, कि प्रश्न ऐसे कुछ बहुत सारे प्रश्न पूछे, उसमें से कुछ ही प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न पूछा कि राजा रानी सब थे सामने, प्रश्न पूछा कि राजा बहुत शुद्ध है, इसका खंडन करो। मतलब क्या है, शुद्ध नहीं है, ऐसे हुआ ना, मतलब केवल इतना नहीं कहना कि शुद्ध नहीं है, खंडन हो गया, ऐसे नहीं बताना भी होगा पूरा शास्त्र के अनुसार। तो राजा शुद्ध है इसका खंडन करो। तो जो विध्वजन कोलाल सोच में पड़ गए कि राजा शुद्ध नहीं है इसका खंडन करना, मतलब शुद्ध है इसका खंडन करना मतलब क्या, शुद्ध नहीं है तो किसके सामने कहना है, राजा के सामने ही कहना है। अगर हमें ऐसे अगर आफत आती है किसी भक्त में को, हम कहते भरोसे आप बहुत शुद्ध भक्त है, अगर हम एक दिन कहेंगे प्रभु जी आप बिल्कुल शुद्ध भक्त नहीं है, कैसे लगेगा उसको, हाँ। और वो भी राजा को कहना है, हाँ। और कोई प्रधानमंत्री आ जाते यहां पे कहते कि आप मिस्टर सो एंड सो आप शुद्ध नहीं है, अच्छा लगेगा ऐसे, और कहने का हमारे ढांढस भी नहीं होगा ऐसे। तो विध्वजन कोलाल सोचे क्या करना है, क्या उत्तर देना है इसका, सोच में पड़ गया। यमुनाचार्य ने कहा ठीक है मैं उत्तर देता हूं इसका, और क्या उत्तर दिया, उसने कहा कि देखो कि राजा जो है वो हर समय क्या करता है, हर समय राजा के द्वारा पाप होते रहता है, और राजा का पाप कैसे होता है आपको पता है, कोई बता सकता है, प्रजा के द्वारा, हाँ, एक सष्टा वन सिक्स है ना, मतलब वन सिक्स पार्ट जो, मतलब प्रजा जो पाप करती है उसका एक सष्टा हिस्सा उसको मिलता है, इसका अर्थ क्या, उससे भी पाप हो रहा है। और दूसरा प्रश्न यमुनाचार्य पूछते हैं कि जो रानी है वो पतिव्रता है, इसका खंडन करो। कितना बड़ा चैलेंज है कोई स्त्री के सामने, अगर ऐसे कहेंगे हम कि आप पतिव्रता, इसका हम खंडन करना चाहते हैं, वो बोलते कि गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसे होगा। या फिर उनके आजकल सैंडल्स वगैरह होते हैं ना, उसका प्रयोग हो सकता है ज्यादातर। फिर उन्होंने कहा कि कैसे करना है, तब यमुनाचार्य ने कहा, विध्वजन कोलाल तो केवल नाम ही था, विध्वजन कोलाहल मचाया था उसने, लेकिन कोलाहल का भी कोलाहल नहीं रहा। उसने कहा, यमुनाचार्य ने कहा कि देखो ऐसे है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, और राजा के शरीर में कौन कौन रहता है, इंद्र वायु यम सूर्य अग्नि वरुण चंद्र कुबेर, इनका भी वास होता है। मतलब रानी जब अपने पति से समागम करती है राजा से, इसका अर्थ क्या हो रहा है, ये भी उसमें है। मतलब रानी कहां से पतिव्रता हो गई, फिर ये मनु संहिता में ऐसे मनुस्मृति में बताया है। तब हैरान रह गए, तब समझ गए कि राजा भी समझ गया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, हाँ। कि मामूली मतलब, हाँ, उसमें मूली भी शब्द आता है, पता है ना आपको, हाँ। मूली बहुत छोटा सा होता है, ऐसे होता है खाने की चीज होती है ना मूली सब्जी में, ऐसे कहा कि बोलते हैं एक कहावत ऐसे है, हमने सुना था कि तुम किस खेत की मूली हो क्योंकि तुम बहुत मामूली हो। समझ ना, आप जो हिंदी समझ सकते हो समझ गए होंगे। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कि मामूली तो मैं ही हूं वैसे, हाँ क्योंकि पाप तो प्रजा कर दे और मुझे भुगतना पड़ता है। इसलिए समझ गए कि यामाचर कोई साधारण बालक नहीं है। तुरंत उसने क्या किया, स्वीकार किया कि ये जो यामुनाचार्य महान भक्त है और इसको मैं आधा राज दे देता हूं। और विद्वाजन कोलाल ने भी स्वीकार किया कि ये मैं आज तक मैं सोचता कि मैं बहुत ही विद्वान हूं, मैं कोलाहल मचा दी है मैंने सभी जगह, लेकिन आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हार गया और ये जीत गए। तो इस प्रकार स्वीकार कर लिया। तो राजा भी स्वीकार कर लेते कभी और कभी कभी स्वीकार भी नहीं करते, हमने दोनों उदाहरण देखे। और आज विशेष रूप से सारंग ठाकुर जी का आज तिरुभाव दिन है। सारंग ठाकुर जी एक महान वैष्णव आचार्य रहे हमारे परंपरा के, गौड़ीय वैष्णव परंपरा के। तो सारंग ठाकुर एक महान आचार्य तो थे ही, और एक बकुल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपना भजन किया करते थे और वहां अपने आराध्य विग्रह की हर समय आराधना किया करते थे। हाँ, उनकी पूजा अर्चा चलती थी और भगवान की सेवा के लिए अलग अलग व्यंजन जुटाना है, ये लाना है, वो हर समय बस व्यस्त रहते थे भगवान की सेवा में। तो भगवान की दिन भर सेवा किया करते थे और संध्या रात के समय गंगा पार करके चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु का जो रात का कीर्तन होता था उसमें सम्मिलित हुआ करते थे सारंग ठाकुर, और वहां कीर्तन में बहुत आनंद लेते थे। और चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते थे कि इनसे, सारंग ठाकुर से, कि आप महान महान वैष्णव हो, आपको भी जीवों का उद्धार करना चाहिए, इसलिए आप दीक्षा दीजिए, दीक्षा प्रदान कीजिए जीवों को। तो मानते नहीं थे, सोचते थे कि मैं तो इतना अधम हूं, मैं कैसे दीक्षा दे सकती। इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी सोचते थे ना, कि नहीं मैं तो दीक्षा नहीं दे सकता हूं। बाद में नरोत्तमदास ठाकुर ने उनका आश्रय लिया था, बहुत सेवा की थी उनकी। उस प्रकार सारंग ठाकुर जी भी सोचते थे कि मैं तो अयोग्य हूं, मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूं किसी को। और एक बार ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे वहां जहां सारंग ठाकुर रहा करते थे बकुल वृक्ष के नीचे, और देखा महाप्रभु ने देखा कि जो बकुल वृक्ष है जिसके नीचे सारंग ठाकुर वास करते हैं वो वृक्ष सूख गया है पूरी तरह से। और जब वृक्ष हरा भरा था तो उसकी उसकी छाया तो प्राप्त होती थी सारंग ठाकुर को, और भजन करने में आसानी होती थी। लेकिन जब महाप्रभु ने देखा कि इस वृक्ष ये वृक्ष सूख गया है, ये सूख गया मतलब एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, ये मूल समेत गिर जाएगा और फिर बाद में सारंग ठाकुर को कोई छाया या कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए महाप्रभु वहां पहुंचते हैं और महाप्रभु वहां पहुंच के उन्होंने इस वृक्ष को आलिंगन दिया, इतना मतलब अपने अपने सुवर्ण मैं बाहु से आलिंगन जब किया उस वृक्ष का, जैसे आलिंगन किया वृक्ष पूरी तरह से हरा भरा हो गया। केवल हरा भरा ही नहीं हुआ, उसको पत्तियां और टहनियां और उसको फल फूल सब पूरा लग गया उसको, मानो जैसे पहले था वैसे हो गया। और फिर सारंग ठाकुर भी बहुत प्रसन्न हो गए और फिर गौरांग महाप्रभु ने कहा कि देखो सारंग, तुम एक महान वैष्णव हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, दीक्षा देनी चाहिए। हाँ, तुम जीवों का उद्धार करने के लिए योग्य हो, कि जो कि तुम्हारा आश्रय लेता है वो क्या हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। ये जब सुना उन्होंने तो फिर बाद में, पहले तो व्रत लिया था, ऐसे अलग अलग व्रत लेते ना, बृहद व्रत होता है, ब्रह्मचर्य का व्रत वगैरह वगैरह, बहुत व्रत, कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत वगैरह। तो सारंग ठाकुर ने व्रत किया लिया था, मैं दीक्षा कभी नहीं लूंगा किसी को नहीं दूंगा, ये व्रत था। और गौरांग महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं आप देना होगा, देना, बहुत जिद किया करते थे लेकिन मना करते थे, एक नम्रता के कारण, उनके आज्ञा का उल्लंघन के उद्देश्य नहीं, नम्रता के कारण। तो एक दिन ऐसे हुआ कि उठ गए सारंग ठाकुर, सोचा कि चलो इतना मुझे कह रहे, बार बार मुझे बता रहे महाप्रभु की दीक्षा देनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, चलो आज जिसको मैं पहली बार देखूंगा उसी को दीक्षा देता हूं। तो चल पड़े बाहर और जाने लगे और गंगा जी में पहुंच गए। गंगा जी में पहुंचने तक तो किसी को नहीं देखा था उन्होंने, कोई दिखाई नहीं दिया था। और गंगा जी में जैसे स्नान करने लगे, वहां से एक शव, मृतदेह, मृत शरीर, कोई मरा हुआ आदमी था, वो जा रहा था वहां से,
जा रहा था मतलब जा नहीं रहा था, वो बह रहा था। वो जा कैसे सकता है, मरने के बाद कोई नहीं जा सकता है ना। जो जाने वाला था वो तो चला गया था, लेकिन पानी से बह रहा था। और जब पानी से बह रहा था और अकस्मात ऐसी हो कि सारंग ठाकुर वहां पानी में तैर रहे थे या नहा रहे थे, उनका स्पर्श उस व्यक्ति को हो गया जो मरा हुआ था। जैसे उसको स्पर्श हुआ तुरंत क्या हो गया, वो जीवित हो गया, जीवित हो गया। और सारंग ठाकुर जैसे देखा उसको जीवित होते हुए, सोचा यही क्या है मेरा पहला शिष्य। ऐसे हमारे आचार्य में ऐसे कभी नहीं हुआ है, ऐसे गुरु ने अभी ऐसे नहीं सोचा कि चलो आज मैं क्या करूंगा, मृतदेह को दीक्षा दे दूंगा। चमत्कार हो गया, मृतदेह को स्पर्श करते ही वो जीवित हो गया। वैसे एक तो आता है ना, हर्षशोक को भी जीवित किया था नारद मुनि ने, चित्रकेतु महाराज का जो पुत्र था ना हर्षशोक। चित्रकेतु महाराज और कृतद्युति रानी दोनों बहुत शोक जब कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, तब वहां पहुंचे थे नारद मुनि अंगिरा मुनि के साथ। और जो वरदान के रूप में जो पुत्र प्राप्त हुआ था हर्षोक, उसको क्या किया था उन्होंने, उसको मृत्यु के बाद जब पहुंचे थे कक्ष में नारद मुनि और अंगिरा मुनि, तब नारद मुनि ने उसको स्पर्श करते ही उसको जीवित किया। तो आत्मा ने प्रवेश किया था उस कक्ष में और जीवित होकर कुछ उपदेश भी दिया था। तो यहां पर वहां नारद मुनि ने स्पर्श किया, यहां किसने स्पर्श किया, सारंग ठाकुर ने, और जीवित हो गए। और जीवित होकर उनको दीक्षा भी दी, मंत्र भी दिया और नाम क्या दिया, सारंग मुरारी ठाकुर। देखिए अपना भी उनका भी नाम आ गया उसमें, और उसका पहले का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था मुरारी, सारंग मुरारी ठाकुर ऐसे नाम दे दिया उसको। तब से वो महान भक्त बन गए सारंग मुरारी ठाकुर। मतलब मृत्यु के बाद भी उसको अपना लिया उसको एक शिष्य के रूप में। और ऐसे तो हमें पता लगता है कि गौर गणेश दीपिका से कि जो सारंग ठाकुर ये ब्रज लीला में नंदीमुखी सखी है, भगवान की लीला में राधा कृष्ण की दिव्य लीला में ये नंदीमुखी सखी के रूप में लीला में सम्मिलित होते हैं। श्री सारंग ठाकुर तीरभावती थी महोत्सव की जय, ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। कुछ समीक्षा अगर करनी है आपको, कुछ बताना है और ज्यादा, क्योंकि आप सभी महान वैष्णव हैं। मैं योगी नहीं समझता हूं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, फिर भी आप कुछ अगर टीका करना चाहते समीक्षा आया तो फिर स्वागत है आपका। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।